नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा मतदान। 5वीं सीट को लेकर कांटे की टक्कर। केंद्र सरकार ने कहा देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है, एलपीजी बुकिंग में आई गिरावट। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर काम पर वापस लौटने की चेतावनी दी। और मौसम विभाग ने एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि का जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए अब से थोड़ी देर बाद 9 बजे से मतदान शुरू होगा। विधानसभा परिसर में मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा और शाम 5 बजे से ही मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या के मुताबिक हर सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का मत चाहिए। संख्या बल के हिसाब से 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है। वहीं 5वीं सीट के लिए मुकाबला काफी रोचक है।
राजद प्रत्याशी को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के समर्थन से चुनाव दिलचस्प हो गया है। 4 सीटों पर जहां एनडीए की जीत तय है, वहीं 5वीं सीट पर एनडीए को जीत के लिए 3 विधायकों की क्रॉस वोटिंग का इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ राजद प्रत्याशी को 6 और वोट की दरकार है। AIMIM के समर्थन की घोषणा के बाद राजद प्रत्याशी अमरिंदर धारी सिंह की जीत के आसार भी बढ़ गए हैं। यदि राजद कांग्रेस माले CPM IIP बसपा और AIMIM के सभी विधायक महागठबंधन के पक्ष में रहे तो राजद उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। यदि इनमें से कोई 3 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की तो 5वीं सीट एनडीए की झोली में चली जाएगी। फिलहाल दोनों गठबंधन जीत का दावा कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
इधर 5वीं सीट पर जीत पक्की करने के लिए कल एनडीए और महागठबंधन दोनों पक्षों की मोर्चेबंदी चरम पर है। एनडीए में जहां दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, वहीं महागठबंधन ने सेंधमारी से बचाने के लिए विधायकों को एक होटल में जुटा लिया है। इस बीच देर शाम AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राजद उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया।
सब लोगों के मशवरे से फैसला पाया है कि बिहार का मौजूदा वक्त का जो सामाजिक ताना बाना है उसके ताल्लुक से इस वक्त राजद के उम्मीदवार को वोट देना मुनासिब है, इसलिए हम लोगों ने राजद के उम्मीदवार को वोट देने का फैसला।
राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राज्यसभा की एक सीट पर पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि एनडीए चुनाव में पूरी तरह बिखर चुका है।
महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह की जीत निश्चित है। हमारे पूरे विपक्ष के 41 विधायक तो इंटैक्ट हैं ही, एनडीए के कई विधायक संपर्क में हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन महागठबंधन की रणनीति सफल होती है।
इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराकी ने सभी 5 सीट पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए कहा कि राजद को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है।
रात्रि में परिणाम आएगा, दावा कोई कुछ कर ले, हकीकत यही है कि एनडीए ने 5 प्रत्याशी दिए हैं। हमारे 5 के 5 नेता राज्यसभा सदस्य बनकर पटना से जाने वाले हैं, हकीकत।
इस बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री मदन सहनी ने भी सभी एनडीए उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है।
हम लोग एनडीए के हमारा 5 उम्मीदवार जीत रहे हैं और हम लोग विपक्ष में जो भी उनका कार्यकलाप है, कहां ठहरे हैं, होटल में है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है और हम लोग इससे अब भी अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्यों नजरबंद करके रखे हुए हैं।
गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए की ओर से जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार और जदयू नेता तथा केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर उम्मीदवार हैं। वहीं राजद ने निवर्तमान सांसद अमरिंदर धारी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल देर रात पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री नवीन राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं, साथ ही वे बतौर विधायक मतदान भी करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश भर में एलपीजी वितरकों के पास गैस की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी बुकिंग में गिरावट आई है। कल लगभग 77 लाख बुकिंग दर्ज की गई, जबकि इस महीने की 13 तारीख को लगभग 88 लाख बुकिंग दर्ज की गई थी। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर भी प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को सौंप दिए गए हैं और अब उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा दुकानों पर ईंधन की कमी का कोई मामला सामने नहीं आया है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। मंत्रालय ने लोगों को घबराहट में खरीदारी नहीं करने की सलाह दी है। इस बीच मंत्रालय ने पीएनजी और एलपीजी गैस कनेक्शन रखने वाले परिवारों को तत्काल प्रभाव से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का निर्देश दिया है। पीएनजी कनेक्शन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने या वितरकों से एलपीजी रिफिल करने की अनुमति नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने की चेतावनी दी है। श्री सिन्हा ने कहा कि यदि वे तय समय सीमा के भीतर काम पर लौट आएंगे तो उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, साथ ही उनकी दोनों हड़ताल अवधि का समायोजन कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों की गति प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने संवाद और समन्वय का रास्ता चुना है। राजस्व प्रशासन को आधुनिक, अधिक प्रभावी और समय सीमा में पूरा करने की दिशा में अब विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय ने राज्य के सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार जिलों के बंदोबस्त कार्यालयों में AI सेल का गठन किया जाएगा, जो विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम में AI के संभावित उपयोग पर कार्य करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे ऐप सैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने और स्थानीय कारकों से अगले 7 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान मेघ गर्जन, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने कहा है कि आज राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ ओलावृष्टि, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
16 मार्च 2026 राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम भाग के जिलों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है।
केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन और अनुशंसाएं आमंत्रित की हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि उसने सभी नागरिकों से नामांकन या अनुशंसाएं करने का अनुरोध किया है, जिसमें स्वनामांकन भी शामिल है। प्रदेश में पुलिस को पोस्टमार्टम और इंजरी रिपोर्ट ऑनलाइन मिलने लगी है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से पोस्टमार्टम और इंजरी रिपोर्ट पोर्टल को जोड़ दिया गया है। हालांकि नालंदा और खगड़िया जिले में अब तक यह सुविधा शुरू नहीं हुई है। 18,181 पोस्टमार्टम और इंजरी रिपोर्ट को ऑनलाइन कर दिया गया है। इनमें 16,091 इंजरी और 1,890 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शामिल है। पुलिस अब अपनी जरूरत के हिसाब से संबंधित रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त कर सकती है। पटना स्थित IGIMS के 8 विभागों में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने IGIMS परिसर में एनेस्थेसिया सिमुलेशन लेबोरेटरी और रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम की सुविधाओं का शुभारंभ किया। श्री पांडे ने कहा कि इन सुविधाओं के शुरू होने से मरीजों को राज्य में ही अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई। जमुई, सुपौल और गयाजी में 2-2 और पश्चिम चंपारण, खगड़िया, जहानाबाद, कटिहार, गोपालगंज और बक्सर में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित बहादुरपुर हौसिन कॉलोनी में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 600 लीटर स्पीड बरामद किया है। मौके से 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। और अब खबरें खेल जगत से। BCA मेंस सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट में कटिहार ने बेगूसराय को रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से पराजित करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बेगूसराय की टीम 48 ओवर में 230 रनों पर सिमट गई। जवाब में कटिहार ने 49 ओवर 3 गेंद में 9 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग में मगध वॉरियर्स, सिवान टाइटंस, सारण स्ट्राइकर्स और सीतामढ़ी सेंटिनल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में चल रही इस लीग की अंक तालिका में मगध वॉरियर्स पहले स्थान पर बरकरार है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में 9 से 29 अप्रैल के बीच मतदान। दैनिक जागरण की सुर्खी है राज्यसभा चुनाव में 5वें प्रत्याशी को लेकर कांटे की टक्कर। प्रभात खबर ने लिखा है देश में कम हुआ LPG संकट, पेट्रोल डीजल और LPG की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है बिहार में बिरला ग्रुप की तैयारी, सीमेंट पेंट की 3 फैक्ट्री लगेंगी, 42,000 रोजगार। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं फास्टैग के दाम 75 रूपए बढ़ाए, 1 अप्रैल से लागू। आज अखबार ने लिखा है नेपाल में बस पलटी, 7 भारतीयों की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान शुरू, 5वीं सीट को लेकर कांटे की टक्कर। केंद्र सरकार ने कहा देश में पेट्रोल डीजल और LPG की कोई कमी नहीं है, LPG बुकिंग में आई गिरावट। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर काम पर वापस लौटने की चेतावनी दी। और मौसम विभाग ने 1 सप्ताह तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।